ஓம் சக்தி. பிரதேசி, आप सभी सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में, इन तरंगों में स्वयं को महसूस कर रहे हैं और उसी महसूसता की श्रृंखला में हमारा ये द्वितीय सत्र, खुला सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। अनुरोध करती हूं हमारे मंच को सुशोभित करने वाले विद्वत वक्तागणों का, राजयोगिनी आशा बहन, डायरेक्टर ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव, भ्राता आनंद पौडेल एमपी नेपाल, भ्राता एम लिंगारेड्डी एक्स एमएलए कड़प्पा आंध्र प्रदेश, भ्राता गंगाराम सौदागर एक्स एमएलए हैदराबाद, भ्राता भगवती प्रसाद सागर एक्स मिनिस्टर झांसी उत्तर प्रदेश, भ्राता जयपाल सिंह एमपी पंजाब, राजयोगिनी चंद्रिका बहन नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ विंग से अनुरोध करती हूं कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और जो भी हमारे डेलीगेट्स ज्ञान सरोवर के कैंपस में बाहर बैठे हैं, उन सभी से अनुरोध है कृपया हारमोनी हॉल में अपना स्थान ग्रहण करें। संध्याकालीन इस सत्र का विषय स्पिरिचुअलिटी फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज प्लूरल सोसाइटी, भारत के विभिन्न समुदायों के लिए भावनात्मक एकता के लिए आध्यात्मिकता। हमारे मंचासीन वक्ता आज इस विषय को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि कहा है यूनिटी स्ट्रेंथ, और हर एक के अंदर अपने इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, और आज वो भावनाएं चाहते हुए भी व्यक्ति उसको प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ निहित स्वार्थ उसके आगे एक दीवार खड़ी करते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, नजरें वही है, नजारे बदल गए, कश्ती वही है, किनारे बदल गए, साथी वही है, सहारे बदल गए, हम वही हैं, हमारे बदल गए। आवश्यकता है अपनी चिंतन की धारा को बदलने की, श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ भावनाएं विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के समीप स्नेह के सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधने वाली है। और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करती हूं राजयोगिनी आशा बहन जी से, जिनको आप सभी ने सुबह स्टेज कोऑर्डिनेटर के समय भी सुना है, आप दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जिसकी आप डायरेक्टर हैं, और पिछले 50 वर्षों से आपने अपने जीवन को इस मानव मात्र की सेवा में समर्पित किया हुआ है, मानसिक, नैतिक और चारित्रिक उत्थान के लिए आप देश और विदेश और समाज के विभिन्न वर्गों, सोसाइटीज में, इंडस्ट्रीज में जाकर उनके अंतर की उस आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का महत्तम कार्य करती हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में आपने एमए विद इकोनॉमिक्स और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाथ कंगन को आरसी नहीं है, उनके ही मुखारविंद से उस भावनात्मक एकता के लिए आध्यात्मिकता कौन सा रोल प्ले करती है हम सुनेंगे। इससे पूर्व बहनों से अनुरोध करती हूं, मंच पर आसीन हमारे माननीय वक्ताओं का पुष्पों से और बैजेस से अभिनंदन करें। राजयोगिनी आशा बहन, भ्राता आनंद पौडर, राजयोगिनी चंद्रिका बहन, भ्राता आनंद पौडाल जी एमपी नेपाल, भ्राता एम लिंगारेड्डी एक्सएमएलए कड़प्पा, भ्राता सुशील कुमार हंसा एमएलए कटक ओडिशा, भ्राता गंगाराम जी एक्सएमपी हैदराबाद,
संध्याकालीन सत्र की चेयरपर्सन स्नेही चंद्रिका बहन, मंच पर आसीन हमारे समस्त राजनेता स्नेही शारदा बहन, सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, जब हम ओम शांति कहते हैं सो इट इज अ वे ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर। जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं, हेलो बोलते हैं, ऐसे जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम ओम शांति कहते हैं, जिसका भावार्थ होता है ओम अर्थात मैं, शांति पीस, मैं शांत स्वरूप हूं। और जिनको ओम शांति कहते हैं उनको भी इस दृष्टि से देखते हैं कि यह भी शांत स्वरूप आत्मा है. सो वी एक्सचेंज द वाइब्रेशंस ऑफ पीस. फर्दर ओम शब्द को यदि हम संधि विच्छेद करके देखें तो इसमें तीन सिलेबल्स हैं, अ उ और म. अ से भावार्थ है मेरा आचरण, उ से भावार्थ है मेरा उच्चारण, और म से भावार्थ है मेरी मनसा, मेरा मन. ये तीनों ही शांतमय चाहिए, समान भी चाहिए, शांतमय भी चाहिए. आजकल लोग जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, स्पेशली यंगर जेनरेशन, तो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भूल गए, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग. आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड भूल गए, मॉर्निंग. इतना फास्ट जमाने में है ये, तो फिर भी मिडिल एज के लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं. जो यंगर जनरेशन है, हाय, और दूसरा भी रिप्लाई करता है हाय. तो मैं प्रायः कहा करती हूं, ये हाय हाय की दुनिया है, इसलिए मुंह से भी हाय हाय निकलती है. ऐसी दुनिया, उसको हम सबने मिलजुल करके वाह वाह की दुनिया बनाना है. और वाह वाह की दुनिया में कई पहलू हैं, कई पहलू. उसमें एक पहलू है इमोशनल इंटीग्रेशन, और वो भी प्लूरल सोसाइटी, उसमें इमोशनल इंटीग्रेशन इट्सेल्फ इज अ बिग चैलेंज. परंतु हम भारतवासी हैं, और भारतवासियों के भाग्य में बहुत चैलेंजेस लिखे हुए हैं, और हर चैलेंज से भारतवासी उभर करके आते हैं. कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? कभी सोचा? भारत पर सबने प्रहार किए हैं, सबने आक्रमण किए हैं, सभी धर्मों ने भारत पर राज्य किया है, लेकिन भारत ने कहीं आक्रमण नहीं किया, फिर भी जिंदा है. कभी सोचा क्यों? बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है हमारी, और हमें उस फाउंडेशन पर बहुत गर्व है, और वो फाउंडेशन है हमारी आध्यात्मिकता. मैं इस विषय को लूंगी आगे. मैं अपनी वार्ता का आरंभ एक छोटी सी कहानी से करती हूं. हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं. पांचों उंगलियां समान तो नहीं है, अलग अलग हैं. पांचों उंगलियों का अपना अपना कार्य भी है, और ये भी उतना ही सत्य है कि अकेली एक भी उंगली कार्य नहीं कर सकती. कहते हैं एक बार इन पांचों उंगलियों में लड़ाई हो गई, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, लड़ाई हो गई. हर उंगली बोले, भाई मैं बड़ी, मैं बड़ी हूं. अंगूठे को समझ में ना आए, उसने कहा ठीक है, मैं एक कॉन्फ्रेंस बुलाता हूं, और हर एक अपने आप को एक्सप्लेन करो कि आप बड़ी कैसे हो. तो पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर, इसको कहा कि तुम एक्सप्लेन करो भाई, तुम कैसे बड़ी हो. तो ये बोली, मैं इसलिए बड़ी कि जब कभी धर्म पिताओं ने परमात्मा की ओर इशारा किया तो किस उंगली के आधार से किया? इस उंगली का। इसलिए मैं बड़ी, क्योंकि मैं परमात्मा की ओर इशारा देती हूं। दूसरी बोली कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं तो हूं ही बड़ी, सच में बड़ी दिखती ही है। तीसरी बोली कि तीसरी को कहा गया भी तुम मान लो तुम छोटी हो, बोले वाह मैं छोटी कहां से आ गई। जब कभी किसी के ऊपर कोई आपदा आती है और कुछ स्टोन पहनना होता है, कोई अंगूठी पहननी होती है, तो किस में पहनते हैं? इसी उंगली में तो पहनते हैं। तो मैं सबकी विपदा हरणी, मैं कैसे छोटी हो गई, मैं भी बड़ी। अब इसको कहा भाई तुम तो हो ही छोटी, तुम ही मान लो, कहा मैं कैसे मानू, भूल गए आप जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया था तो कौन सी उंगली पर? इस उंगली पर उठाया गया, तो मैं भी बड़ी। अंगूठे ने सोचा ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, कहा ठीक है। उन्होंने बूंदी का थाल मंगाया और हर उंगली को बोला अकेली अकेली लड्डू बनाओ। अब आप सोच सकते हैं एक उंगली ऐसे ऐसे करती रहेगी तो क्या कर सकेगी, कर सकती। और फर्दर अप्रिशिएट करने वाली एक बात और भी है, अगर ये चारों उंगलियां एक ही साइज की हो जाए ना तो भी ग्रिप नहीं बन सकेगा, हम यूं ही करते रह जाएंगे, ग्रिप नहीं बन सकता। इसलिए एक विविधता हमारे समाज की शोभा है। अगर सब एक ही तरह के हों, एक ही प्रकार के विचार हों, एक ही प्रकार का रहन सहन हो, एक ही प्रकार की सब चीज हो, आपको वो समाज प्रिय लगेगा, प्रिय लगेगा। एक ही तरीके की सब चीज है नहीं। जो इसमें वैरायटी है, जो इसमें विविधता है, पहली बात हमें यह अपने बुद्धि में धारण करनी होगी कि विविधता हमारे समाज की शोभा है और जीवन को आनंद देने वाली है। जब मेरा एटीट्यूड बदल जाता है तो वही प्लूरलिज्म मेरे लिए आकर्षण और स्ट्रेंथ का साधन बन जाता है। और जब मैं उसे देखती हूं कि ये अलग है तो मुझे वह महसूस होते हैं जैसे वो मेरे एनिमीज हैं या मेरे ऑपोजिशन में हैं या मुझसे अलग हैं। ये एटीट्यूड सर्वप्रथम हमें अपना और अपने देश की संस्कृति अगर आप उसे देखेंगे तो जितनी अपने देश की संस्कृति में वैरायटी है संसार में किसी भी देश में नहीं है, किसी देश की संस्कृति में नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे अधिक रिच और इतने आक्रमणों के पश्चात भी आज भी जिंदा दिल वाली है, आज भी रमणीक है। किसी ने कहा कि भरण पोषण करने वाली संस्कृति, तारने वाली संस्कृति और उसके साथ साथ रमणीक संस्कृति। परंतु विषय है कि इसमें इमोशनल इंटीग्रेशन वो किस विधि हो। आज का सिनारियो जो हम देख रहे हैं वह रम्य नहीं है, मन को आनंदित करने वाला नहीं है। क्षमा करिएगा। आज हम एक दूसरे को सदा फेथ की बजाय डाउट की निगाह से देखते हैं, अनुमान की निगाह से देखते हैं, संदेह की निगाह से देखते हैं। वो प्यार, वो भाईचारा, वो स्नेह, वो बल इसलिए समाप्त होता गया। बचपन में पहली क्लास में कहानी हम सबने पढ़ी थी, सबको याद होगी कि वो पिता जो मृत्युशैया पर होता है अपने बच्चों को बुलाता है, उनके हाथ में एक एक लकड़ी देता है और कहता है इसे तोड़ दो। बच्चे आराम से उसके दो टुकड़े कर देते हैं। जब उसको कहता है बच्चों को अब इन सबको जोड़ दो और अब तोड़ो, तो कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। प्यारे भाई और बहनों, आज इंडिपेंडेंटली हम सब बहुत सक्षम हैं। हर एक अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन जब बात आती है एक दूसरे के साथ संस्कारों की इंटीग्रेशन करना, वहां हमारे आगे बड़े बड़े परीक्षाओं के प्रश्न आ जाते हैं, ईगो के रूप से, स्वार्थपरता के रूप से, अभिमान, अब मैं संचय करूं आदि आदि। उस चीज को मैं किनारे कर देती हूं, लेकिन एकता के लिए, भावनात्मक एकता के लिए कई पहलू हो सकते हैं, कई साधन हो सकते हैं। और अगर हम दृष्टि अपनी स्वतंत्रता संग्राम की ओर ले चलें, हम पाते हैं उस समय जो राष्ट्र प्रेम था, जो देश प्रेम था, पेट्रियोटिज्म, अपने देश के लिए जान की बाजी लगा देना, उस समय हम सब एक थे। स्वतंत्रता संग्राम में हर धर्म ने, हर कौम ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। उस समय हमने ये नहीं देखा था हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। हर एक अपने अपने रीति से उससे उठकर राष्ट्र पहले है, देश पहले है, और देश के नाम पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी हम सब ने की थी। आज वो भारतीयता, वो इंडियननेस, वो देश प्रेम कहां चला गया? आज क्षमा करिएगा, अपने ही देश के लोग लोभवश, स्वार्थवश देश की गुप्त बातें दूसरे देशों तक दे देते हैं। अपने ही देश के तो लोग हैं, वो राष्ट्र प्रेम कहां? ये एक चीज ऐसी थी जिसने हमें एक किया था, आज वह भी ड्विंडल होकर तमोप्रधानता की ओर। गद्दारी, धोखेबाजी, देश कहीं भी जाए परंतु मेरी पेटियां भरनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, इसने हम सबको अलग अलग करके रख दिया, एक दूसरे के प्रति ब्लेमिंग कल्चर, उंगली का दूसरी ओर जाना और एक दूसरे से दूर होना समुदायों का, आज हम सब अपनी इन आंखों से देख रहे हैं। इससे हम एक नहीं हो पा रहे। दूसरा साधन है जिसको हम कहते हैं धर्म। धर्म में अगर आप नजर दौड़ाएं, इस नाम पर भी हम एक नहीं, इमोशनल इंटीग्रेशन इस नाम पर भी नहीं। वो वक्त भी था जब हम कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, आज नहीं। एक ही धर्म के अंदर उसमें भी हमारे डिविजन्स होने के कारण, भेदभाव होने के कारण, युद्ध स्तरीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आप गौर करेंगे एक ही धर्म के दो संप्रदाय लड़ पड़ते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है वो हम सबसे छिपा नहीं है। हिंदू हिंदू लड़ पड़ते हैं, मुसलमान मुसलमान लड़ पड़ते हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन लड़ पड़ते हैं, हो रहा है। इस नाम से भी हम सब एक नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये सब दैहिक है, देह से संबंधी है। एक ही धर्म के भाई अपने को भाई कहेंगे। हर धर्म सोचता है कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्थापना करें, विश्व बंधुत्व हो। एक ही धर्म के लोग अपन को भाई कहेंगे, लेकिन जब दूसरे के साथ आता है तो नहीं, तब शत्रुता उत्पन्न होती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक चीज जो कही गई वो ये है कि हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व धर्मों का त्याग कर। जब तक हम स्किन को देखते हैं, देह को देखते हैं, दैहिक दृष्टिकोण रहता है, और दैहिक दृष्टिकोण होने के कारण हमारे डिविजन्स स्वाभाविक। एक ही साधन है जिस आधार से हम सब एक हो सकते हैं, और वो है देह से न्यारे होकर अगर हम स्वयं को आत्मा निश्चय करें। आत्मा हम सबकी ज्योति बिंदु एक जैसी है, हम सबके अंदर आत्मा है। मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहूंगी, हम सबके अंदर परमात्मा नहीं, परमात्मा को एक होने की जरूरत नहीं है, आत्माओं को एक होने की जरूरत है। जब आत्मिक दृष्टिकोण होता है, देह से न्यारे होते हैं, तब एक दूसरे को हम भाई की निगाह से देख सकते हैं। और जब तक शरीर है, शारीरिक दृष्टिकोण है, हम देखते हैं ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है, आदि आदि। स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से ऊपर की चीज है। किसी ने कहा रिलीजन्स डिवाइड, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। किस इस आधार से हम सब एक परिवार के बन सकते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण के आधार से, और कोई आधार नहीं है इसमें। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी कौम का है, किसी भी आयु का है, किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी भाषा का है, वो शारीरिक है। लेकिन जब आप आत्म स्वरूप में आते हैं, स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं और दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तब आपके अंदर जो ओरिजिनल स्वरूप में आत्मिक गुण है, अनादि संस्कार है, ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं, वह उजागर होती हैं। तब हमारा एक दूसरे के प्रति भाई का, बहन का नाता पक्का होता है। ये अगर चीज, निस्संदेह मैं ये नहीं कहती हूं कि धर्म भिन्न नहीं होने चाहिए, ये नहीं, बेशक जो जैसा है वैसा रहे, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण यदि हो जाएगा तो हम एक दूसरे को समझ सकेंगे, अप्रिशिएट कर सकेंगे। गौर करिए, इस मानव सृष्टि का बीज रूप कौन? परमात्मा। परमात्मा को सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है, और उस बीज से उत्पन्न हम सब शाखाएं प्रशाखाएं हैं। हम सबका उद्गम स्थान, हम सबका सोर्स, हम सबका ओरिजिन तो वही एक है ना। उस एक से निकले हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस प्रकार यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड हो सकता है, अगर ये भावना रहे और एक दूसरे के प्रति अप्रिसिएशन रहे, अप्रिशिएट करें, तो जो आज समस्या हमारे देश में है वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के बल से नष्ट हो सकती है। तब हमारे अंदर प्रेम होगा, एक दूसरे को समझने की भावना होगी, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाने की भावना होगी, काइंडनेस होगी, मर्सी होगी, कंपैशन होगा, आदि आदि क्षमा भाव होगा। ये चीज तब ही साकार रूप में संभव हो सकती है, अन्यथा जो डिविजन्स हैं ये बनते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और दूरियां उत्पन्न होती रहेंगी। एक दूसरे को हम संदेह, अनुमान, शक की निगाह से देखते हुए एक दूसरे से शत्रुता उत्पन्न करते रहेंगे। मेरा अंत में यही कहना है, ईश्वरी विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को जो मैंने समझा और जिसको अनुभव किया, जिस आधार से, समय को देखते हुए मैं अधिक डिटेल नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं आपको ये बात अवश्य बताना चाहूंगी। यूनाइटेड नेशंस एक चीज है, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यूनाइटेड नेचर्स क्रिएट करके बताया है। यदि आप कभी यहां पर उस समय आए जिस समय यहां पर विदेशी होते हैं, गोरे और काले एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे गोरे काले, काले लोगों की सेवा करते हुए आप पाएंगे। इसी रीत से आप पाएंगे क्या कारण है ये ईश्वरी विश्वविद्यालय इतना फास्ट, इतने सारे विश्व में 137 देशों में द्रुत गति से चला गया, फैला, क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हम बाउंड्रीज को क्रॉस कर, सीमाओं को क्रॉस कर, लिमिटेशंस को क्रॉस कर, आध्यात्मिकता के बल से एक दूसरे को देखते हुए आध्यात्मिक रीति से जीवन यापन कर सके, इस बात का ही ज्ञान फैलाया और उसका स्वरूप यहाँ पर हम देखते हैं। कितने ही भिन्न भिन्न यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान सरोवर में, भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के भाई बहन यहीं पर रहते हैं, लेकिन कितना आपस में प्रेम है, स्नेह है, जो एक दूसरे को टॉलरेट ना कर सके परंतु यहाँ एक मुष्ट होकर के रहते हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण है आध्यात्मिकता। और यही चीज हम चाहते हैं अपने देश में पुनः उजागर हो, जिससे ये देश हमारा सुख शांति समृद्धि संपन्न बने। ओम शांति।
आशा बहन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में विषय को न्याय देते हुए कहा, क्विट वाइसिस मोमेंट, नेगेटिविटी का और विकारों का दशहरा मनाया जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने बांट दिया इंसान को, धरती बांटी, आकाश बांटा, मत बांटो इंसान को। इसलिए आवश्यकता है अगर आप सब आज मेरी एक बात को मान लें, स्वयं को बदलने का आज ऐलान कर दें और अपने आप से पूछें, तू कौन है और तेरा कर्तव्य क्या है? तू ईश्वर की संतान है और तू एक शांत पवित्र शुद्ध आत्मा है, तो उठ खड़े हो जाइए और करिए उस आध्यात्मिक क्रांति की एक शुभ शुरुआत, और हो जाएगा सारे विश्व के अंदर वो भाईचारा, वो एकता, वो भावनाएं स्नेह और सहयोग के सूत्र में सब बंध जाएंगे। और अब अनुरोध करती हूँ भ्राता आनंद पौडेल जी से, आप हमारे नेपाल पड़ोसी देश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अपनी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं हमारे समक्ष रख रहे हैं। सभी ग्रीटिंग्स देने वाले हमारे अतिथियों से मेरा अनुरोध कर रहेगा, 5 से 6 मिनट में अपनी उन भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें।
धन्यवाद। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राजनेताओं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय इस सम्मेलन का इस सत्र की चेयरपर्सन, भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सांसदों, विधायकों और नेपाल से मेरे साथ आए हुए मेरे मित्र सांसद इंद्र बानिया, उनकी पत्नी विमला दीपा वानिया और विजय भाई जी, और आमंत्रित संपूर्ण महानुभाव, ब्रह्म कुमारी दीदी बहनी और ब्रह्म कुमार भाई, सभी को मैं नेपाली जनता की ओर से, नेपाल के सभी सभासदों की ओर से हार्दिक अभिवादन एवं नमन करता हूं। ओम शांति। नेपाल से और भी सभासद साथी आने वाले थे, लेकिन आप लोगों को मालूम है हम संविधान बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 21 गते तक की अंतिम समय सीमा है सहमतियों के लिए, अगर उस समय तक सहमति ना जुट सकी तो हम लोग विधि और प्रक्रिया में जाना होगा। हम लोग भी असमंजस में पड़ गए थे, लेकिन हमने जाने आने का दृढ़ निश्चय किया। बाबाओं की इच्छा से हमारी सदन की कार्यवाही 25 गति तक पोस्टपोन भी हो गई और हम पूरे कार्यक्रम में यहां रह सके। अब मैं सबसे पहले आप लोगों की त्रिदिवसीय इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में हमें आमंत्रण करके इस पवित्र स्थल पर उपस्थित होने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता समर्पित करता हूं। मैं पहली बार यहां आया हूं, फिर भी इस संस्था की नेपाल में आयोजित होने वाले, मेरे क्षेत्र में आयोजित होने वाले हर एक कार्यक्रम में मैं शरीक होता हूं, सहभागी रहते हुए आया हूं और सहयोग करते हुए आया हूं। अभिजय भाई, सुशीला बहन से निरंतर संपर्क बनाए हुए वहां की संस्था के हर एक कार्यक्रम में सहभागी होता आया हूं। आज आप लोगों ने जो टॉपिक्स रखे हुए हैं, राजनीति में जो भ्रष्टीकरण अपराधीकरण व्याप्त होते हुए जा रहे हैं, इसके लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखकर ये जो टॉपिक्स आपने रखे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे एक शेर याद आया, ठीक होगा कि नहीं ये तो आप लोग भी जानिए। गुलिस्तां बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ऐसे परिस्थिति है आज की राजनीति का। इसीलिए हमारी निर्वाचन प्रणाली सबसे बड़ी जटिल अवस्था में है, मुझे ऐसा लगता है। हम जैसे निर्वाचन प्रणाली अपनाए हुए हैं नेपाल भारत लगाकर अन्य मुल्क में, हम लोग दल के मैनिफेस्टो भी रखते हैं और स्वयं कैंडिडेट अनेक आश्वासन देते हुए भी चलते हैं, अंतिम में आश्वासन पूरा नहीं कर सकते, जनता निराश होते हैं, दल बदनाम होते हैं, ये वास्तविकता है आज की। इसके कैसे करेक्शन किया जाए, ये समुचित छलफल की विषय होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पानी और आदमी की बानी हैबिट नीचे की ओर जाने का मन करता है, उसे ऊपर लाने के लिए शक्ति और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इस ऊर्जा की, शक्ति की, हमारी बानी को, हैबिट को चेंज करने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए जो अभियान शुरू किया है, मैं उस अभियान के एक अभियंता के रूप में आगे बढ़ना चाहता हूं, आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। यह आप लोगों के सामने जाहिर करता हूं। हरेक आदमी में योग्यता होता है, उस योग्यता से सफलता भी हासिल होते हैं, लेकिन सफलता को बरकरार रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम चरित्र नहीं रख सकते तो हम सफलता भी बरकरार नहीं रख सकते। इसीलिए चरित्र निर्माण की अभियान में इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने विश्वव्यापी रूप में जो अभियान संचालन किया है, मैं नमन करता हूं। और मेरे एक विश्वास है, हांवादियों द्वारा दुनिया बदला नहीं जा सकता, दुनिया नावादियों द्वारा बदला जा सकता है, क्योंकि हांवादियों परंपरा का अनुसरण करते हुए चलते हैं, नावादियों परंपरा का अवस्तुवादी और अव्यवहारिक पक्ष को पुनर्विचार करते हुए चलते हैं। इस जरिए उन्होंने अनगिनत अच्छे प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ता है, फिर भी नावादियों द्वारा दुनिया बदलने का ताकत रखता है। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इसी अर्थ में समझता हूं। परंपरा का अवस्तुवादी और अव्यवहारिक चिंतन का गंभीर रूप से अध्ययन करते हुए ये संस्था आगे बढ़े हुए हैं। अंतिम में मैं आप लोगों ने निर्माण किया हुआ यह विशाल संरचनाएं और निस्वार्थ सेवा भाव से आप लोगों का एक इस महान एवं गौरवपूर्ण अभियान जो हमें द्रवीभूत कर देता है और हम भी हमारे क्षेत्र में हमारे ब्रह्म कुमारी वहां के सेवा केंद्र और हम सांसदों वहां के लोकल अथॉरिटी और संघ संस्थाओं से मिलकर सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी बनाने के अभियान में चले हुए हैं। वहां के कोई सड़क में सड़क बाल बालिका नहीं दिखाई देते, वहां कोई नागरिकों वृद्ध वृद्धा विक्षिप्त नागरिक कोई दिखाई नहीं देते, उनके लिए आश्रम की व्यवस्था कर चुके हैं। इस अभियान में हम लगे हुए हैं और वहां भी एक पीस पार्क बनाने के अभियान में हम लगे हुए हैं। विजय भाई जी इसके साथ मिलकर वहां बनाने के लिए लगे हुए हैं। अंतिम में पद और शक्ति, सभी पद और शक्ति अस्थाई होते हैं, क्षणिक होते हैं। हम 8848 मीटर के सागर माथा में भी आधा घंटा टिक नहीं सकते, 40,000 फीट की उड़ान भी अंततः नीचे आ जाते हैं। हम लोग अभी पद धारण करते हैं फिर भी नीचे आना पड़ता है। नीचे आने के लिए जगह रख के चलने के लिए सतर्कता की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मैं चल रहा हूं। धन्यवाद। जय नेपाल।
बहुत सुंदर समन्वय है पद और उसकी उपयोगिता का। इसलिए किसी ने कहा है, दो पांव के बीच गजब की दोस्ती है। एक आगे जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है। अगर ऐसी दोस्ती इंसान अपने आप से कर ले, तो दुश्मनों को आत्महत्या करनी पड़े। और अब हमारे समक्ष आ रहे हैं भ्राता मलेला लिंगा रेड्डी जी। आप कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के एक्स एमएलए हैं। आपने तेलुगु देशम पार्टी कड़प्पा का प्रेसिडेंटशिप से बहुत सेवाएं दी हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज यूनियन भी रह चुके हैं, हैदराबाद के डायरेक्टर हाउसिंग बोर्ड के भी रह चुके हैं। भिन्न भिन्न पदों से आपने समाज की और जनता की बहुत सेवा की है। अनुरोध करती हूं अपनी शुभ भावनाएं हमारे समक्ष रखें।
The spiritual and political dignitaries and eminent personalities in the dais, Vicky Asha Benji, Anand Padil, Gangaram Saudagar, Saiba Sushil Kumar Hansa, Bhagwati Prasad Sagar, Vicky Sharda Ben, Jaypal Singh and Chandrika Ben, and sisters and brothers of the Rayas. Firstly, I thank to the God and the Bens who gave me the noble opportunity of to be amongst you on this pious and divine occasion at the Mother Nature, a holy place, a divine place, a place of green, clean and perfect purity. Thanks. Otherwise, we cannot get an opportunity of participating in a spiritually linked political, administrative and social linked very, very, very important seminar like this. Thanks a lot to the organizers, and from the side of all invitees, thank you once again. And I thank my Pradutur Bhayan Sharda and Mr. Chandra who felicitated me to attend this seminar. It's a very important aspect of the spirituality for emotional integration of India's plural society. If one can understand the nature of India, he can understand the entire world. Duties, diversity in unity, various castes, creeds, customs, conventions, cultures, natures, languages, religions, etc., etc. In the entire universe, in the entire world, no country, no nation can survive with these sort of diversities except in India, exclusively for its speciality in its leadership in the spirituality. Our social life, as it is coupled with spirituality, our political life is coupled with spirituality, and our personal life and life of Pandital is inseparable from spirituality. We are united, integrated, and inseparable on account of religion, caste, or creed, language. That is the highness, that is the greatness of the Indian society, the Indian nation. As our Ben just now said, caste divides the people, language divides the people, religion divides the people. The only thing and only aspect that unites people is the unite humans across the nations, across the boundaries of the states, is the only spirituality. Spirituality is not confined to the humans. Even it is confined to the animals. It is confined to the birds and also trees also. Spirituality is not limited to the humanity. It pertains to the all living creatures of the universe, in the earth, in the seas, rivers, and in the sky, in the space also. That is the speciality of the Indian spirituality. Nehru said, "Who lives if India dies? Killing Indians, killing people of Kashmiris, killing people of a section of people in Punjab, killing people of Assam, Meghalaya, Manipur. How can India survive? First we have to leave the nation, we have to let the nation to live, and first we have let the countrymen to live in it, then only we have to live in India, we have to live a national life and the life of Indian style and Indian culture." That's what Nehru also said. Transformation, reformation has to be started from a person, then to family, then to society, then to nation, then to entire universe. Without reforming ourselves, without reforming a person, no society survives, no nation survives, the entire universe cannot survive. Somewhere I saw a slogan or saying something. It is written that thoughts become words, words become actions, actions become habits. Habits become attitude. Attitude become character. Character is the destiny of every human being. No character, no human being. The politics without character, the economics without ethics are useless, waste, and there is no place for such politics or economics in the civilized world. We know that everything is come from the nature. Everything is acquired from the nature. Everything, every comfort, every luxury, every article, object is attained from the nature. So for the sake of the comforts, for the sake of conveniences, for the sake of luxuries, the human gained victory over the nature. This is wood, it is come from the forest. This is shut, it is come from the cotton. It is grown on a particular type of soil. So nature gives everything. That is the victory of the humans over the nature for his sake. But the thing is, where from he has come, for what he is making use of the all natural wealth and natural things, he is again destructing the nation, nature. That is very bad. It is useful for you, and it is meant for you. You exploited the nature, and you should not destroy the nature. We have to keep the nature, and the nature of the human beings also intact. And again, the religion is misconceived. The religion is being misinterpreted for gaining supremacy of a religion over the another religion. For gaining supremacy, miming, murders, massacre is being taken place under the guise of jihadis, fias wars, etc. No religion preaches, practices violence. Ahimsa paramo dharmaha. The non-violence is the theory, theme, ideal, everything of every religion. There is no place in any religion for violence. Wonderfully, unknowingly, all the creatures, animals, birds, trees, water, air, fire, all these things did not lose its original nature, did not lose their virtues, except human beings, for which God created them. They are following, they are doing, they are not deviating, except human beings. Cow eats grass, it doesn't eat meat. Tiger eats meat, it doesn't eat grass. But humans eat grass, leaves, green leaves, vegetables, animals. In some countries, a president or prime minister, it is not desirable to mention his name, eats the meat of his co-human beings. Why the humans lost their original nature, original virtue, their original character and charity? Because of the lack of the service of pious institutions like this. So your endeavor, your maneuver, your efforts towards that is highly admirable, never forgettable, ever rememberable. Thanks once again for your noble services to us. That we know that Vivekananda also said, every person shall have four dimensions. Okay, physical dimension, mental dimension, intellectual dimension, spiritual dimension. You know that when people are, men are ailing from various diseases, you cannot live long and you cannot keep good health also. A mental thing regarding so many people are unable to draw distinction, what is mental, what is intellectual. Mental is just keeping, storing some information in your mind. Intellectual is drawing distinction between what is divine, what is demon, what is virtuous, what is not virtuous, what is good or what is bad. So, we being the politicians have to inculcate good nature, character in the minds of the people, voters. We have to tell them to behave intellectually, to behave with some discrimination, difference, distinction, etc., etc. So, thanks once again. Let us try, let us endeavor for elimination of criminalization in politics, for elimination of corruption in politics. One foreigner explained, where there are criminals in India in politics? He said, because India is being ruled by the criminals. Hence, there are criminals in politics. So, that sort of thing has to be eliminated from politics and social life. Thank you for giving me the noble opportunity. Thank you, one and all. Thank you, everybody.
अपने विचारों को बहुत जील से हमारे समक्ष रखा. So it is like this. Spirituality is not a cake which I take once a while, but it is a bread which I have to take every day. और अपने माइंड को स्पिरिचुअली एम्पावर करते रहे. जिस मॉरलिटी, कैरेक्टर, यूनिटी और इमोशंस की आवश्यकता है तभी उसको फुलफिल कर सकते हैं. और अब अनुरोध कर रही हूं भ्राता गंगाराम जी से, जो एक्स एमएलए हैं हैदराबाद के, और इस ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 10-12 वर्षों से यूनाइटेड है. प्रैक्टिकल जीवन में उन वैल्यूज को किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं, अपना एक एक्सपीरियंस हमारे समक्ष शेयर करेंगे प्रातः गंगाराम जी.
ओम शांति. मंच पे जो बहन दादी राजयोगिनी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी दादी जी राजनेताओं, इस कार्यक्रम में जो बहन भाई लोग आ चुके हैं, सबको मेरा नमस्कार. ओम शांति. और मुझे भी थोड़ा बाबा का बच्चा बन के, मैं एक महीना हुए तो 13 साल होता, अभी एक महीना कम है. मुझे हिंदी तो आता ही नहीं था, पर समझता था. बाबा का बनने के बाद हिंदी में बात करना शुरू किया. मेरी मम्मी 104 तक थी, वो मराठी बात करती थी. मेरे पिता कन्नड़ बात करता था. मैं हूं तेलुगु मीडियम, बाबा है हिंदी मीडियम. अभी मुझे आदेश किया गया 7 मिनट, डेफिनेट 7 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं। और जीवन ऐसा होता है, 78 मार्च 3 तारीख को मुझे एमएलए बनाए प्रजा ने, एमएलए भी मुझे नहीं मालूम, यूं ही होटल में ग्लास नहीं देते थे, ये चमार है चप्पल सीने वाला बता के मुझे चाहिए तो भी स्नान करते थे, तो क्या लक, यूं ही इंदिरा जी का लहर था, इंदिरा जी भी एमपी नहीं थी, हार गई 78 में, मुझे टिकट भी नहीं मांगा, 3 पार्टी में टिकट अप्लाई किया, जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, हमारे पास रेड्डी कांग्रेस था इधर देश में, और कांग्रेस है, 3 में भी अप्लाई किया, एमएलए तो नहीं होता पर नेता हूं बोल के बोल लेता हूं, जात का बात नहीं बोलता हूं बोल के, ऐसी किस्मत हो एमएलए बना दिए लोग। एमएलए बनने के बाद लगातार 4-5 बार एमएलए बना दिए, और मैं समझा एमएलए बन के यही काम करते शायद, लूटना, डराना, कमाना, खाना पीना, गलत के सिवाय अच्छे का एड्रेस ही नहीं था मेरे पास, अच्छाई का एड्रेस ही नहीं था। और कोई कुछ बोले कि दलित हूं बोल के कलेक्टर हो या कितना बड़ा आदमी हो उस पर केस लगाना डराना, दूसरा काम ही नहीं था, तो जुआ भी बहुत खेलता था, घर में भी 200 बकरियां थे, कभी बेचता नहीं था। तो पत्नी बिचारी आई, सावित्री बताती थी, 2 लड़की है, जुआ खेल के पैसा क्यों खराब करता, जो भी गलत जो भी कुछ कर पर जुआ मत खेल। मैं बोलता था ना मैं जुआ खेलूंगा। वो एक दिन तिरुपति में बिचारी, वो आरती लगाते ना तिरुपति में, वो आरती पे हाथ लगाओ जुआ मत खेलो, मैं वो गड़बड़ बहुत रहता भीड़ तिरुपति में, उसको बोल दिया सावित्री पक्का इतना खेलना, बोल तो मराठी में बोला यहां नहीं खेलता, उन्हें खुश हो गई, जुआ बंद कर दिया बोल के, ट्रेन में बैठने के साथ ही शुरू कर दिया। वो बोल रही ऐसा क्यों, अभी सब भगवान के सामने ईमान खाया, मैं बोला दीवानी वहां नहीं खेलता हूं, बोला मंदिर में यहां खेलता हूं। तो ऐसा जीवन में इतने यात्रा किया और जितने भक्ति किया उतने गलत भी किया, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो वो एक बहन ब्रह्म कुमारी बहन शक्ति बहन ने एमएलए क्वार्टर में आके जो ज्ञान देती थी वो बताई, एक बार माउंट आबू जाओ तुम। मैं बोला माउंट आबू जाके क्या करना सावित्री, वहां तो शादी नहीं करते, बुट्टू नहीं लगाते, वो व्यस्त है, मैं नहीं जाता बोला। वो लगातार कोशिश करके यहां मेरे को भेजी, सुनी नहीं। तो मैं बोला उसके खुश के लिए जैसा तिरुपति में ईमान खा के अपना कंटिन्यू करा, वो इसे करे तो गया बोल के यहां आया, बिचारी उसको भी नहीं मालूम यहां क्या क्या है। तो मुझे यहां समझ आया, इधर ही बैठा हूं 2001 में बैठ के हिंदी सुन पाया हूं, कोई दोस्त नहीं है मेरे बगल में, अकेला हूं, वो क्या किस्मत है। देखो इतना सुना जो भाई लोगों का ब्रह्म कुमारी बहन का चेहरा देखा तो मैं बोला मेरे की भी 2 लड़की है, बीवी बहन है, इतने मां लोगों को देखता हूं, ये चेहरा में क्या चमक है, इन्हों 10-10 बार फेयर एंड लवली लगा के पाउडर लगाते हमारे बच्चे, ये एनपी का चमक नहीं है, ये कितना सेवा है, कितना त्याग है, और मैं क्या कर रहा हूं एमएलए बन के, क्या करना क्या कर रहा हूं, आगे पीछे पुलिस, गेस्ट हाउस में जुआ खेलना, गलत काम करना, पुलिस बोलना, क्या कर रहा है एमएलए, वो मीटिंग में, मीटिंग नहीं सब गलत काम। ऐसा आदमी यहां 3 दिन ज्ञान सुनने के बाद मैं बोला मैं पक्का रावण हूं, कच्चा नहीं। यहां जो बहन लोग दीदी दादी लोग ज्ञान दे रहे, अगर इस ज्ञान को मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरे गंदगी को यहीं अगर धुला नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं। इंसान का जीवन में वो प्राइम मिनिस्टर भी बनो वेस्ट है, मुझे नेता बनाए तो रोज का रोटी के लिए बूट पॉलिश करे तो कोई कुछ पूछे नहीं मुझे, पैसा ही पैसा कमाने के बाद गंदगी ज्यादा हुआ, ये गंदगी में कितना बुराई मैं लिया, ऐसा समझ में यहां आ गया। आने के बाद ऐसी संकल्प आ गया पक्का, दादी प्रकाश मणि ने अनाउंस करवाई माइक के द्वारा, हाल नंबर 3 को सारे राजनेताओं, तो सुशील कुमार सिंधे जी भी मेरे साथ थे, बहुत बड़े नेता थे, कम से कम लगभग 3-4 हजार लोग आए, पर नेता लोग 60-70 वो हाल नंबर 3 में जाके बैठे। बैठने के साथ ही दादी बोली, आप लोग राजनेता हो और आप लोग सोने का पैसा ना देके, पन सोने का पैसा था भारत में, चांदी था, पित्तल था, अभी कागज के करेंसी के नेता हो आप लोग, आप प्रजा को ज्ञान देना, रास्ता बताना, नेशनल हाईवे का रूट बताना प्रजा को, आप लोग प्रजा आपको नेता करे, एमएलए एमपी मंत्री वगैरह, आप एक साल के लिए जो कुछ किए छोड़ दो, एक साल के लिए आप पक्का रहो, माउस ना खाओ, ड्रिंक ना करो, गुटखा गलत झूठ, अपने आंखों से अच्छाई देखो, बुराई छोड़ो एक साल के लिए। तो एक बहन ने बताई सामने बैठ के, मंत्री गंती, दादी हमको 33% होना, बेटा सारा ये आपको जिम्मेदार किया बाबा, आप ही बहुत बड़े भाग्यशाली है, 2 मिनट बैठो। बोल के दादी को बिठा के, मंत्री को बिठा के दादी बोली, एक साल के लिए हाथ उठाओ, मुझे भी कुछ और एक काम करना था। मैं बोला वो तो अभी एक साल कितना दूर रहता, देखूंगा। बोल के दादी के ऑर्डर पे उस दिन जो हाथ उठाया, उठाए सो हाथ, अभी तक नीचे नहीं किया, जाके धर्म पत्नी को बोला ट्रेन उतरने के साथ ही पूरे बर्तन बदल दो, और लहसुन कांदा भी नहीं घर में, बिल्कुल घर मंदिर बनाना है। वो लोगों के आसपास बोली, इन्हें पागल तो नहीं हुआ, इन्हें क्या क्या कर रहा, नॉनवेज के सिवाय नहीं रहता था, इन्हें बोल रहा पूरा ही बदल दो। मैं बोला कुछ भी हो, वहां से गांव गया, गांव में 200 बकरी बेच दिया, और एकदम बिल्कुल डेली 4 बजे योग के लिए उठना, जहां भी संत रहे वहां पे मुरली जाना, दूसरा कुछ नहीं, एक पक्का बाबा का बनके, और नेता भी हूं, जिरायत करता हूं, और बिजनेस है डामर रोड वगैरह करता हूं, मेरा भाई चप्पल दुकान भी चलाता है, सारा करते हुए एक बाबा के सिवाय दूसरा कुछ ही नहीं कर रहा हूं। ये बदल कोई बातों से भाषण से तो आता नहीं, बोल क्या समझ गया, बहुत भाषण देखा मैं भी, बहुत कुछ किया मैं भी, इतना गलत आदमी, इस शान को भगवान से जुड़वाने का एक ही समझता है, इस दुनिया में कहां नहीं है, यही है माउंट अबो में बाबा के बच्चे बना के पक्का बना के भेजने वाले। अभी देखो पक्का बनने के बाद जो राक्षस का घर बताते थे, आज लोग बोल रहे ये भगवान मंदिर है क्या घर को, इतना तो परिवर्तन ला लिया। और सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, आईएएस को, आईएएस आईपीएस को बताता हूं, एक बार माउंट अप हो जाओ, जाके दादी बोली आप क्वेश्चन मार्क भी मत लगाओ, ट्राई कर दो, तुम इस मशान घाट जाएंगे, ट्राई का सवाल ही नहीं, क्वेश्चन मार्क होता, पुलिस स्टाफ लगा के जो जीवन में इतना परिवर्तन ला लिया, और क्षेत्र में भी बिल्कुल ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम जो भी प्रोग्राम में बैठो उनके लिए 1-2 मिनट बात करके सारा परिवर्तन का, पवित्रता का और सच्चाई से इस व्यवहार को आगे ले जा रहा हूं और ले जाता हूं। आप लोग मेरे उत्ते गंदे तो नहीं है, नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अभी आप अगर समझते करते तो अभी सारे ही नेता क्या क्या तो बताते, क्यों तो मैं भी 36 साल हो गया नेता बन के, नेता क्या करते मुझे पक्का मालूम है, क्यों बोले तो किसी का मर्डर होता, किसी चोरी करता, उसको छुड़ाए तो ही नेता, नहीं तो हमारा खाता कंप्लीट, कुछ भी नहीं हमारा। मैं देख लिया वो, देख के बाबा का बन के पक्का बच्चा बन के पक्का कार्य कर रहा हूं, और जितने भी लोग में जाते हुए यही बता रहा हूं। दादी ने 7 ही मिनट बोली तो 1 मिनट ज्यादा हुआ, ओम शांति।
बहुत रमणीकता से जीवन की वास्तविकता को और स्वयं के परिवर्तन को हम सबके समक्ष रखा। मैं समझती हूं आप सभी को भी अवश्य अपने उस मनोबल को दृढ़ बनाने की प्रेरणा मिली होगी। तब किसी ने कहा है, क्षमा बुझकर जल सकती है, कश्ती डूबकर निकल सकती है। मायूस ना हो, जीवन कभी भी बदल सकता है। और अब हमारे बीच भ्राता भगवती प्रसाद सागर आपने 3 बार उत्तर प्रदेश में मंत्री पदों को सुशोभित किया है। चाहे खाद्य है, ऊर्जा है, बाल विकास और महिला कल्याण है, और राजस्थान में उदयपुर स्थित नारायण संस्थान में जहां विकलांगों को सकलांग बनाया जाता है, उनके मां बाप बनकर के अनेक बच्चों के जीवन को एक नया जीवन, एक नई दिशा दी है। और समाज में न्याय के लिए आंदोलनों में भाग लेकर के जन जन का कल्याण किया है। अपनी शुभ भावनाएं हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं भ्राता सागर जी।
ओम शांति। सबसे पहले मैं आत्मिक भाई जिन्होंने इस गिरावट के दौर में इतने अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया, ऐसे भाई को नमन करता हूं। और इस माउंट आबू में मुझे 5 बार आने का सौभाग्य हमारे बीके भाई हृदेश जी के द्वारा जो झांसी से लेकर के मुझे आए, और मैं कई बार जब यहां पर आया मुझे 2 बार बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस मौके पर ये इतना महत्वपूर्ण विषय रखा गया है, जब हमारे देश ही में नहीं, दुनिया में जब से सृष्टि बनी है तब से इतनी गिरावट कभी भी इतिहास में देखने को नहीं मिलती है, जितनी गिरावट वर्तमान समय में आ गई है। ऐसे समय में हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें, हमारे ब्रह्म कुमारी भाई एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा बड़ा परिवर्तन करने का जो बीड़ा उठाया है वो शर में बर्फ, मुख में शक्कर, पेट में आग, पैर में चक्कर, ये कहावत, ये हमारे ब्रह्म कुमारी बहने और ब्रह्म कुमारी भाई लोगों को समझाते हुए, कभी भी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा, क्रोध में नहीं देखा। ऐसा बाबा का घर, ऐसा अनुशासन दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दुनिया में पैसे से जो काम नहीं होते हैं, जो दुनिया में पैसे से काम नहीं होते हैं, यहां तो बिना पैसे के ही सब काम होते हैं। और अद्भुत नजारा हमारे ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सामने तमाम हमारे वर्तमान एमएलए और एमपी और हमारी ऊर्जावान तपस्वी बहनें पूरे देश के कोने कोने से बहुत से राजनीतिक भाइयों को लेकर के यहां आई हैं। हमको आपको चिंतन करना जरूरी है कि हमारा देश दुनिया का संपन्न देश था। हमारे देश का जो व्यापार था वो दुनिया में 28% व्यापार होता था और दुनिया की जो आमदनी होती थी उसमें लगभग 30% आमदनी भारत की होती, अकेले होती थी। हमारा देश दुनिया का सबसे संपन्न देश था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब करेंसी नहीं चलती थी उस वक्त जब व्यापार होता था तो हमारे देश के कुशल कारीगरों द्वारा जो माल निर्मित किया जाता था वो विदेशों में जाता था। एक तराजू के पल्ले में सोना रखा जाता था और दूसरे तराजू के पल्ले में हमारे देश की वस्तुएं रखी जाती थी। हमारे देश में इतना ज्यादा सोना हो गया था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश गुलाम हुआ। हमारे देश में 64 तरह के अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, हमारे देश के लोगों को भिखारी बनाया, हमारे देश के लोगों को कंगाल बनाया और आजादी के लिए हमारे देश के 7 लाख से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी दी तब हमारा देश आजाद हुआ। ये आजाद नहीं हुआ, ये एक एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि 67 साल की आजादी के बाद आज भी हमारे देश में मैकाली की शिक्षा व्यवस्था चलती है। आज भी 67 साल की आजादी के बाद ₹34,735 कानून अंग्रेजों के बनाए हुए चलते हैं। आज भी हमारे देश में, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है कि हमारा देश दुनिया का सबसे संपन्न देश है लेकिन 20,000 लोग प्रतिदिन भूख से तड़प करके मरते हैं। हजारों लोग प्रतिदिन दवा के अभाव में तड़प करके मरते हैं। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है जिससे सरकारें चलती हैं, जिससे विकास होते हैं, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था 8,000,00,000 करोड़ है और हमारे देश में 20,000 तरह की खनिज संपदा है जिसमें 20 तरह की बड़ी खनिज संपदा चिन्हित की गई है जिसकी वैल्यू निकाली गई है तो 20,000,00,000 करोड़ उसकी वैल्यू है। पूरे दुनिया की संपत्ति से 2.5 गुना ज्यादा हमारे देश में सिर्फ खनिज संपदा है और भारत आज कहां पर खड़ा है आप देखते हैं कि आजादी का जो सपना हमारे अमर शहीदों ने देखा था इसमें आपको हमको चिंतन करने की जरूरत है कि 67 साल की आजादी के बाद आज भी इस देश में व्यक्ति बाद में चलता है, जात पहले चलती है, सम्मान और अपमान योग्यता के आधार पर ना मिलकर के जातियों के आधार पर मिलता है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें जात धर्म मजहब कहीं आड़े नहीं आता है। इसमें जो सम्मान एक बाल्मीकि को मिलता है वही सम्मान एक ब्राह्मण पुत्र को या बहन को मिलता है। इतनी ऊंची सोच लेकर के ये हमारा जो मिशन हमारे भाई और बहनों ने शुरू किया है, मैं भी इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके झांसी जनपद में 2 सेंटर बनाए और मेरा चूंकि आज इतनी गिरावट है यहां पर हमारे झांसी के भी भाई आए हैं, मैं अलग अलग मुझे जहां से भी भेज दिया जाता रहा, जो क्षेत्र कमजोर होता रहा मैं कुछ लेकर के नहीं जाता, क्योंकि अगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे भाई कल अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि जनता अपेक्षाएं गलत लेकर के आती है और उसको करना पड़ता है। मैं 3 बार मंत्री रहा और 3 बार विधायक रहा। मेरी अगर आत्मा ने गवारा नहीं किया तो मैं मन के कहने पर कभी भी काम नहीं करता हूं। मैं 1996 से चाय तक छोड़ दी थी। अगर राजा बिलासी होगा, जनप्रतिनिधि बिलासी होगा तो जनता दुखी होगी, जनता भिखारी होगी। अगर जनप्रतिनिधि तपस्वी होगा, त्यागी होगा और जनता के लिए काम करेगा तो जनता दुखी नहीं होगी। आज के इस परिवेश में मैं बताना चाहता हूं कि भाई जनता जब विधायक या एमपी या छोटा ग्राम प्रधान भी चुनाव लड़ता है तो वो सभी मूल्यों को ताक में रख करके कोई दारू पिलाता है, कोई पैसा बांटता है, कोई मुर्गा खिलाता है, इतना नैतिक स्तर गिरा देता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब जनप्रतिनिधि गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके अगर वो जनप्रतिनिधि बनेगा तो वो जनता को कैसे न्याय देगा? जो गलत रास्ते से चुन करके आएगा वो कभी भी सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाएगा। मैं तो हमारे झांसी के भाई बैठे हुए हैं, मैं पुरानी टूटी जीप लेकर के गया था और घर से 1 लाख भी रुपया मैंने खर्च नहीं किया। वही संसाधन पैदा करके एमएलए बनता था, मंत्री बनता था और इसके बाद जनता की सेवाएं मन से करता था। और जब क्षेत्र बदलता था, जब मुझे हाईकमान क्षेत्र बदलने के लिए कहते थे तो क्षेत्र बदलने के बाद उस क्षेत्र की जनता रोती थी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे देश में आज राजनीति में बड़ी गिरावट आई है और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो दुनिया के 7 विद्वानों में से एक थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति वो मास्टर की है जिसके माध्यम से सभी ताले खोले जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा गिरावट अगर हमको देखने को मिलती है तो राजनीति में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस देश में 6,743 जातियों में बांटे गए समाज में, ये टुकड़ों में बांटा गया समाज जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा से आपस में भाईचारा बना करके हम लोग आपस में भाईचारा बना करके देश को ऊर्जावान नहीं बनाएंगे, आपस में बटे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बटे रहेंगे, हम लोग अपने स्वार्थ में तमाम सिद्धांतों की तिलांजलि दे देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं। भाइयों, आपको हमको चिंतन करना है कि 67 साल की आजादी के बाद आज भी भारतवर्ष में गरीब लोग अपने 2-2, 4-4 सौ रुपए में अपने बच्चों को बेच देते हैं। जब लोग कुल्हड़ से चाय ट्रेन में पी करके फेंकते हैं तो गरीब के बच्चे दौड़ करके कुल्हड़ को चाटते हैं। जब लोग खाना खा करके शादी बारात में और वो फेंक देते हैं तो जूठा उस भोजन में उसमें लोग गरीब के बच्चे ढूंढ करके खाते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मैं यहां पर भी मैंने देखा कि हमारे बहुत से भाई, आप लोग यहां पर आए हैं, मैंने देखा कि हमारे बहुत से भाई और बहनें जो खाना मिलता है, जो भोजन प्रसाद मिलता है उसको भी छोड़ देते हैं। एक तरफ भूख से तड़पते हुए लोग, हमारी बहनें जब अपने बच्चों को भूख से तड़पते में देखती हैं, तो 10-10 5-5 रुपए में अपनी इज्जत आबरू बेच करके बच्चों का पेट पालती हैं, और दूसरी तरफ हमारे भाई आप सब लोग हम लोग भोजन को प्रसाद को तिरस्कार कर देते हैं। हमको खाना उतने लेना चाहिए जितना हमको जरूरत हो, 4 बार लीजिए लेकिन जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा न लीजिए। थाली में कभी भी एक कण बचना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप स्वयं विचार करो कि हम लोग विनाश स्वयं अपना कर रहे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके स्वस्थ समृद्ध और वैभवशाली भारत बनाने का, संस्कारवान भारत बनाने का जो बीड़ा हमारी बहनों ने हमारे भाइयों ने लिया है, इस बीड़ा को हम आप सभी तभी पूरा कर सकते हैं जब आपस में भाईचारा पैदा करके आज जो हमारी नास्वर आत्मा है, हम कभी भी मन के कहने पर न चलें। मन हमेशा गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो लौकिक दुनिया है इन सुख सुविधाओं में काम क्रोध लोभ मोह में फंसाता है, और आत्मा हमेशा हमारे जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि परमात्मा के ओर खींच करके ले जाती है। आत्मा के कहने पर हमको आपको चाहे लाख मुसीबत पड़े लेकिन आत्मा के कहने पर ही हमको चलना चाहिए, हमको मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए, चाहे कितना बड़ा लालच हो लाभ दिखाई देता हो। मैं इस मौके पर हमारे जो भाइयों और बहनों ने बड़ा योगदान किया है, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इतना अच्छा कार्य जो शुरू किया गया है इसमें आप हम सब लोग मिल करके, हमारी बहनें गांव-गांव में जा करके हमको आपको जगाती हैं कि सेंटर में आइए, बाबा की मुरली सुनिए, अपने आप को सुधारिए, अपना कल्याण कीजिए, समाज का कल्याण कीजिए, राष्ट्र का कल्याण कीजिए। लेकिन वो घर घर जाती हैं और हम लोग सोचते हैं, हमारे समाज के भाई सोचते हैं कि इनमें उनका स्वार्थ है। मैं बताना चाहता हूं कि जब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं, इस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हूं, तो सोचने की समझने की हर तरह की पवित्रता आ गई है। पवित्रता मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि सुबह से शाम तक कभी भी एक शब्द मेरे मुख से गलत न निकले। कहते सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इन भावनाओं को लेकर के मैं जीता हूँ, सन्यासी की जिंदगी जीने का प्रयास करता हूँ, और 3 बार मंत्री रहा, कभी जीवन में कभी दाग लगने का मौका नहीं दिया है। जो आप सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप ऐसी संस्था से जुड़ करके अपने आप को सुधारेंगे तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इन भाइयों बहनों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत सुंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने के प्रयास को, ये जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य हमारे समक्ष रखा, और अब कुछ मिनट्स के लिए हम सब चलते हैं अपने उस अंतर मन की यात्रा की ओर। स्ट्रेट बैठ जाइए, आंखें खोलकर और अपनी दृष्टि को सामने उस ज्योति पर केंद्रित करिए। अपने मन के विचारों को भ्रकुचि के मध्य केंद्रित करते हुए दृढ़तापूर्वक मन को शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प दीजिए। पांच तत्वों के शरीर से भिन्न अति सूक्ष्म शुद्ध शांत और पवित्र आत्मा दो नेत्रों के मध्य डीप इनसाइड इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड हाइपोथैलेमस का सेंटर पॉइंट जो एक एनर्जी है एक स्पिरिट है एक चमकता हुआ सितारा हो देह के संबंधों धर्म जाति भाषा और रंग भेद से ऊपर मैं चैतन्य अनादि और अविनाशी अविभाज्य एक सत्ता मुझ आत्मा में इस पांच तत्वों को कंट्रोल करने की रूल करने की पावर है। अपने विचारों का कंट्रोलर और रूलर इस श्रेष्ठ संकल्प से मन शांत और शीतल होता जा रहा है। चलिए सुदूर पांच तत्वों की दुनिया से पार जहां इन सूर्य चांद और सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता आवाजों की दुनिया से पार उस ब्रह्ममय तत्व में निर्वाण धाम में जहां मुझ आत्मा के सर्व गुणों और शक्तियों के भंडार निराकार परमपिता परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप शिव बाबा है उनके के सानिध्य में। महसूस कीजिए शांति और शक्ति की और पवित्रता के सागर की। वो पवित्र किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। परम शांति की गहराई में लौट आइए। शनै शनै पांच तत्वों से बने हुए शरीर में और आसीन हो जाइए भृगु जी के मध्य और फैलाइए शांति की तरंगे चारों और विश्व में। ओम शांति शांति शांति। ओम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे ओपन सत्र की चेयरपर्सन राजयोगिनी चंद्रिका बहन, जिन्होंने अपना जीवन पिछले 48 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं से ओतप्रोत किया है और उसमें भी एक विशेष वर्ग जिसके ऊपर सभी की आंख रहती है और वो है हमारे समाज का युवा धन। आप हमारे युवा विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सुबह बात हो रही थी स्कूल में बच्चों से इस आध्यात्मिकता का, मूल्यों का और नैतिकता का शुभारंभ किया जाए। हमारी इस युवा विंग ने अनेक वर्षों से विशेष स्कूल के छोटे बच्चों के लिए 6th, 7th और 8th विशेष उनों के लिए टच द लाइट प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो भारत के अनेक विद्यालयों में चलता है उससे और बड़े युवाओं के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस प्रकार से हो और अपनी उन शक्तियों को किस प्रकार से क्रिएटिविटी के द्वारा समाज की सेवा कर सके, आप दिन रात उसमें व्यस्त रहती हैं। अभी एक हफ्ता पहले ही इसी स्थान पर विशेष युवाओं का कार्यक्रम था और नीचे जो बहुत बड़ा कैंपस शांतिवन है, शायद कुछ ने देखा होगा, नहीं तो आप जाते हुए अवश्य उसका अवलोकन करें। वहां भी 3 दिन विशेष युवाओं का ट्रेनिंग कार्यक्रम चला। अनुरोध करती हूं आज के सत्र को समाप्त करने का उत्तरदायित्व संभाले। आप अहमदाबाद से हैं, आपने विशेष बच्चों के लिए, कुमारियों के जीवन के निर्माण के लिए कुमारियों के हॉस्टल का भी संचालन किया और अनेक कुमारियों को जीवन की एक नई दिशा भी दी। अपने विचार हमारे समक्ष व्यक्त करें। राजयोगिनी चंद्रिका बहन,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस संध्या में जिनकी छत्र छाया में हम सभी बैठे हैं, ऐसे परम कृपालु परमात्मा को याद करते हुए और जिनों के संपूर्ण बलिदान से परमपिता परमात्मा ने इस महायज्ञ को प्रारंभ किया, ऐसे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो पहले एक साधारण व्यापारी थे हीरा जवाहरात के, और परमात्मा के आविर्भाव से स्वयं परमात्मा ने जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, ऐसे माता पिता को याद करते हुए और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के आदि में भारत की जिन महान विभूतियों ने, जिसे अंबा या सरस्वती का समकक्ष कहा जाए, जिनके ही कर्तव्यों की यादगार बने हैं, ऐसी हमारी महान दादियां, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, आदि महान दादियों की बलिदान की इस पृष्ठभूमि पर हम सभी बैठे हैं। आज के दिन बैठे हुए हमारे मंचस्थ महानुभाव विद्वान वक्तागण और अच्छे राजनैतिक महानुभावों को यहाँ पर देख करके हमें प्रसन्नता हो रही है, और हमारी साथी बहन शारदा बहन जी, आप सब सभा में उपस्थित हमारे भाई बहनें, वर्तमान परिस्थितियों से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं और बाकी भी वर्तमान परिस्थितियों का भयानक चित्र वो हमारे अगले वक्ताओं ने सुनाया, इतने तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन का परिचय देकर के इस विश्वविद्यालय ने आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाया एक प्रत्यक्ष अनुभव सुनाया। इस सब सुनते हुए देखते हुए आज मेरे दिल की एक ही भावना है, आप सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, अपना बहुत मूल्यवान समय आप सभी ने दिया है, इससे अधिक आपको मालूम नहीं है लेकिन उस परमपिता परमात्मा को मालूम है कि आप एक एक व्यक्ति और एक एक हस्ती ईश्वर के इस महापरिवर्तन के कार्य में कितनी मूल्यवान हो ये भगवान जानता है। और उसी के सिलेक्शन से आप यहां आए हो, आप ऐसे ही नहीं यहां पहुंचे हैं, यहां आने के लिए भी भाग्य चाहिए। आप सभी मानते हैं कि आप यहां आए हैं, आप यहां आए हैं, आपका भाग्य का सितारा चमक उठा है, आपके भाग्य की वो घड़ी आई है जब आपका समग्र व्यक्तित्व बदलने जा रहा है। मेरे अति प्रिय भाई बहनी, अब तो मुझे वही बात आपको कहनी है कि इस भयानक अंधकार को मिटाने के लिए सारे संसार की समस्याओं को खत्म करने के लिए इस धरती पर फिर से नया विश्व लाने के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं, इसी बात को समझ करके और हमें अपने आप से एक दृढ़ संकल्प करना है। बहुत ध्यान से सुनना और आज से अपने लिए एक काम करना, मैं देखती हूं जब इस विश्वविद्यालय में नहीं आई थी तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। हम अपने जीवन से थक जाते हैं, हमें अपना मूल्य मालूम नहीं होता है, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, साथ साथ हम परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, समय को दोष देते हैं। और आप बताइए दूषित मन खुश कैसे रह सकता है, दूषित मन शांत कैसे रह सकता है, दूषित मन स्वयं को प्यार कैसे कर सकता है, दूषित मन स्वयं का सम्मान कैसे बढ़ा सकता है। अभी भी मैं बहुत लोगों को सुनती हूं जो कहते हैं क्या करें हमारा तकदीर ऐसा है, अपने भाग्य को कोस, लेकिन आज से हमें अपने आप को प्यार करना है। हम इस संसार के अंदर एक अमूल्य व्यक्तित्व हैं। बहन शारदा जी ने जब हम सबको योग की अनुभूति कराई, हमें ये महसूस कराया हम परमात्मा की संतान हैं, हम एक श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, ज्ञान, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता, शक्ति, ये हमारा अपना गुण है। मित्रों, एक बात आप सोचिए कि भगवान ने आपके जैसा, आपके जैसी विशेषताओं वाला दूसरा इंसान नहीं बनाया है, बनाया है। आप संसार में घूम करके मेरे जैसी एक दूसरी बहन ढूंढ करके लाएंगे, ले आएंगे? मेरे जैसी केवल एक दूसरी बहन ढूंढ के ले आएंगे? कोई ला सकता है? ला सकता है? नहीं ला सकते हैं। हम अपनी शक्तियों को, क्षमताओं को, विशेषताओं को कहां भूलते हैं? आज की 95% मानसिक शक्तियां खत्म हो रही है। किस मानसिकता में, किस विचारधारा में मैं अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करती हूं या दूसरों के साथ कॉन्ट्रास्ट करती हूं, इस कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं अपने को दूसरों से थोड़ा ऊंचा महसूस करती हूं तो मुझे अभिमान आता है। अगर मैं थोड़ा नीचा महसूस करती हूं मुझे निराशा आती है, डिप्रेशन आता है। वही बात हम दूसरों के साथ भी करते हैं। दो बच्चे हैं घर में, वहां भी हम कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करते हैं। दो मित्र हैं, उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम, ये ऐसा है, वो ऐसा है, करते हैं। ऐसा होता है? होता है तो जरा हाथ उठाओ। तो हमारा सारा समय इस कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, मेरा, तेरा, मैं, तू, ये वैर विरोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आप ये समझे कि आप एक विश्व की न्यारी प्रतिभा हो और जैसे मैं हूं वैसे संसार का हर इंसान भगवान का बच्चा है और हरेक की प्रतिभा न्यारी है और भगवान ने हरेक को अलग अलग कार्य दिया रहे और हरेक अपना काम कर रहा है। सबसे पहले आप अपने को इस सम्मान से देखिए और अपने को बहुत ही अधिक प्यार कीजिए और अपने भाग्य को इतना सराहना कीजिए कि मैं इस विश्व मंच पर बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। पहला काम ये आप कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि मैं एक यूनिक हूं, गौरव के साथ। मेरे जैसा कोई पास्ट में नहीं हुआ है, कोई भविष्य में नहीं होना है, न वर्तमान में है। इसलिए जो मुझे करना है भगवान के लिए या संसार के लिए, वो मेरे से ही होगा। मैं किसी और की अपेक्षा न रखूं। मैं करना प्रारंभ कर दूं। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी एक बात, हम अपनी विचार शक्ति को नकारात्मकता में, पास्ट के थिंकिंग में, भविष्य की चिंताओं में व्यर्थ करते हैं। कल चली गई है, आने वाली सेकंड का भरोसा नहीं है, मुझे प्रेजेंट में जीने दो। आपकी हर सेकंड को आप हीरे तुल्य बना दीजिए, फिर देखिए आप जीवन का कितना सुख ले पाते हैं। एक विवेकानंद ने पवित्र विविधता और भारत की संस्कृति से विश्व में भारतीय संस्कृति का नारा बुलंद किया। एक महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को गुलामी से छुड़ाया। एक मैं आत्मा, चाहूं तो क्या नहीं कर सकती, ये अंदाज अपना बनाओ। एक पिता श्री ब्रह्मा ने अपने जीवन को ईश्वर समर्पण करके आज हमारे जैसी हजारों बहनों को शिव शक्ति बनाया और लाखों गृहस्थियों के जीवन को आश्रम बनाया। बस एक छोटा सा मंत्र अपने जीवन के साथ ले जाओ, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। आप ईश्वर को जानकर, अपने आप को जानकर राजयोग करना सीख जाओ, ईश्वर से बुद्धि लगाना सीख जाओ। परमात्मा के साथ बुद्धि जुटने से जैसा संग वैसा रंग, आप स्वयं परमात्मा जैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे हैं। जैसा बाप वैसे ही बेटे होते हैं। हम महसूस करें हम भगवान के बच्चे हैं। ये शरीर तो नाशवंत है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान कर, परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ कर और अपने जीवन को केवल आप बना दो। केवल आप अपने एक जीवन को बनाएंगे तो संसार को बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। किसी को दोष मत दो, अपने को भी दोष मत दो। अपना निर्दोष और निर्मल व्यक्तित्व बना करके इस संसार को चार बातें देना शुरू कर दो। पहले स्वयं को दो, प्यार करो अपने को खूब, सम्मान करो अपना खूब, आत्मविश्वास रखो अपने में खूब और बांटो सारे संसार को प्यार ही प्यार। आप में होगा, आप सबको दे सकेंगे, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है। संसार के हर इंसान को एक चीज अच्छी लगती है और वो है अप्रिशिएशन, महिमा। कुछ साल पहले मेरा दुबई जाना हुआ, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत मुझे पूछा गया कि आप युवाओं के लिए काम करती हो, बहन वर्तमान युवाओं की आवश्यकता क्या है, क्या चाहिए, एक शब्द में सुनाओ, क्या चाहिए युवाओं को, क्या चाहिए? प्यार चाहिए। क्या चाहिए? मैंने कहा अप्रिशिएशन। केवल आप युवाओं को अप्रिशिएट करो, उन्होंने छुपी हुई शक्तियों को बाहर ले आओ, आप उनकी आत्मा के दीपक को जगाओ और सचमुच वो लोग खुश हो गए। ये हर इंसान को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अरे हम देवी देवताओं के आगे क्यों आरती उतारते हैं, क्यों महिमा गाते हैं, क्यों भजन कीर्तन करते हैं? कहते हैं खुशामत तो खुदा को भी पसंद है। अगर खुदा को चाहिए तो हर इंसान को चाहिए। आप सभी से मेरा एक नम्र अनुरोध है, यहाँ आए हो, अपने आप से दृढ़ संकल्प करके जाइए, आप अपने जीवन को बदलने वाले, आप ही मूर्तिकार हो। परमात्मा आपको साथ देगा, आपकी जीवन की प्रगति और उन्नति के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आप सब अभी क्या करेंगे, आप सभी क्या करेंगे जी? डू राइट थिंग्स राइट नाउ। शुभ काम में देरी नहीं होती है, इसलिए कहा मरना भला उनका जो औरों के लिए जीते हैं, जीना भला उनका जो औरों के लिए मरते हैं। भगवान उनका होता है जो दूसरों के लिए जीता है, इतिहास उनका होता है जो दूसरों के लिए जीता है। इसलिए मैं समझती हूं हर एक के अंदर ये साज बज रहा होगा कि पाना था सो पा लिया, अब और कुछ बाकी नहीं रहा। तो स्वयं को पहचानते हुए जो भी इस सत्र से प्रेरणाएं ली, उसको अभी ही प्रैक्टिकल में धारण करेंगे। एक अनाउंसमेंट है, इस पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में जो भी भाई बहन आए हैं जिन्होंने इस विद्यालय से गॉडली गिफ्ट ईश्वरीय सौगात नहीं ली है, कल प्रातः है जब 6:30 बजे आपके राजयोग शिविर का द्वितीय सत्र है, उस सत्र के पश्चात जिन्होंने सौगात नहीं ली उनको सौगात मिलेगी। और अभी चंद्रिका बहन से अनुरोध करती हूँ मंच पर आसीन हमारे वक्ताओं को विद्यालय की तरफ से शॉल पहना करके सम्मानित करें और ईश्वरीय प्रसाद भी उन्हें भेंट करें।